നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. देखो संसार में बहुत अच्छा ये सत्संग चला है, संसार भर के सत्संग में जितने शास्त्रों में सत्संग हुआ है वो सत्संग जितना भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सत्संग कराया इतना विशाल सत्संग नहीं मिलता कहने में. इतना इतना इतनी देर से बताओ शांति पर्व पूरा सत्संग का है. युधिष्ठिर ने पूछा महाराज शोक होता है, शोक कैसे दूर हो. न चाहते हुए भी शोक होता है. पितामह भीष्म कहने लगे कि युधिष्ठिर हर मनुष्य को ये समझना चाहिए कि शोक हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारा शोक किया हुआ क्या काम आएगा. शोक सबका शोषण करता है, शरीर का शोषण करता है, ज्ञान का शोषण करता है, हमारी बल शक्ति का शोषण करता है. एक बार की बात है, इंद्र राजा बन गए और दैत्यराज नमुची थे, वे वरुण पास से पकड़े गए थे. तब इंद्र ने आकर नमुची से कहा, हे राक्षस राज, तुम्हारे हाथ से राजलक्ष्मी भी चली गई और तुम वरुण पास से बंध भी गए, लेकिन तुम बड़े शांत सागर के समान बड़े गंभीर हो, शोक नहीं करते हो, क्या बात है. नमुची ने कहा कि शोक क्यों करें, शोक करने से लाभ क्या है. शोक करने से एक तो शत्रु प्रसन्न होते हैं और जिस विपत्ति के लिए शोक करेंगे उस शोक के कारण से कोई सहायता भी नहीं करता, शोक स्वयं सहायता नहीं कर सकता. संताप से लक्ष्मी नष्ट होती है, संताप करने से शोक करने से आयु नष्ट होती है, धर्म नष्ट होता है. इसलिए हर प्रकार का वैमनस्य त्याग करके दुखों को दूर करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए. देखो इंद्र, शोक अवस्था में परमात्मा का विशेष स्मरण होने से वो भजन बड़ा विलक्षण होता है. यदा यदा ही पुरुष कल्याणे कुरुते मन है, जब जब ये मन कल्याण की तरफ जाता है, परमात्मा के चिंतन में लगता है, तब स्वतः ही उसके दुनिया के काम भी पूरे होते हैं. संसार के काम तो पूरे होते ही है, सारे मनोरथ पूरे होते हैं. सर्वार्था नात्र संशय, क्या करें साहब, धन नहीं है भगवान का नाम, क्या करें, बेटे की नौकरी नहीं लगती है भगवान का नाम लो. आत्मोद्धार में लगे रहेंगे, दुनिया के काम तो अपने आप होते रहेंगे. जगत का शासन करने वाला एक परमात्मा है, वही परमात्मा गर्भ में रक्षा करता है और वही परमात्मा समय आने पर हमको यहां से ले भी जाता है. इसलिए जीने और मरने को लेकर हर शोक मत करो. जो वस्तु यथा यथा से प्राप्तव्यम, जो इसको प्राप्त होने वाली चीज है वो उसको जरूर मिलेगी. जो होने वाला है वो जरूर होगा, नहीं होने वाला बिल्कुल नहीं होगा. हे इंद्र, चिंता करने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं. अब तुम विचार करो इंद्र, भगवान गर्भ में कैसे संकट में रक्षा करते हैं और वही शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है, शरीर के अवयव काम नहीं करते अंदर, तो भगवान कृपा करके उस शरीर को छोड़कर उसको दूसरा शरीर देते हैं और जैसा उसने कर्म किया उस कर्म के अनुसार उसको शरीर मिलते हैं. वैसी उसको अवस्था मिलती है। ये शोक क्यों किया जाए? आज मैं हारा गया और वायु देवता ने मुझे, वरुण देवता ने मुझे बांध लिया, क्या हो गया? मुझे तो जीवन में ये चीज देखने पर और आनंद की अनुभूति है। चलो ऐसा नहीं तो ऐसा ही सही। ऐसा जिसका भाव होता है वह न मुह्येत कदाचन है, वो कभी भी मोहित नहीं होता। इंद्र सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो आएगा। तुम बताओ कौन सा ऐसा ऋषि है जिसके जीवन में दुख नहीं आया? कौन सा ऐसा देवता है, कौन सा ऐसा दैत्य है, कौन सा ऐसा असुर है, कौन सा ऐसा प्रकांड विद्वान है? अरे जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि जिनका संसार से कोई संबंध नहीं, उनके सामने भी विपत्ति आ जाती है। लेकिन बुद्धिमान आदमी होता है वो इन विपत्तियों से घबराता नहीं, शोक नहीं करता है। लोग देखते हैं कि शास्त्र को जान लिया तो हम पंडित हो गए। नहीं नहीं, न पंडित है वो, पंडित थोड़ा ही है। पंडित तो वो है कि जो क्रोध नहीं करता है, पंडित वो है जो राग नहीं करता है, पंडित वो है जो लोभ नहीं करता है, पंडित वो है कि किसी भी संकट में अपने हृदय में किसी प्रकार का शोक आने ही नहीं देता है। हिमवान इव अचल है, पर्वत के समान, हिमालय के समान अचल होकर रहता है, उसका नाम पंडित है। देखो ये बड़ी बड़ी मनोकामना की पूरी होती है, वो जिसको मुंह में न डाल दे वही वास्तव में जीता हुआ है, वो धुरंधर है। धुरंधर जो भी अवस्था मिले उसमें उसको हरदम आनंद का अनुभव करना चाहिए। सेठ जी ने तो और भी विचित्र बात कही कि भाई बड़ी भारी बीमारी लग गई, तकलीफ हो गई, तो क्या करो? कि और ज्यादा मुस्कुराओ, आनंद, झूठे ही हंसो। वो नकली हंसते हंसते आप असली हंसी में आ जाओगे। देखो सभा वो अच्छी लगती है, साधु पुरुषों का बैठना वो अच्छा लगता है, जहां पर जाने के बाद हमको भगवान की और शोक मिटने की बात अच्छी लगती हो। धर्म का अवगाहन करो। विद्वान पुरुष के कर्म होते हैं वो बड़े विचित्र होते हैं। हाथ में ले लो यानी होने वाली चीज को कोई मंत्र के द्वारा, बल के द्वारा, पराक्रम के द्वारा, प्रज्ञया बुद्धि के द्वारा, पौरुषेण शीलेन किसी के द्वारा भी वो न मिलने वाली चीज को नहीं पा सकता। कि राम मेरे पास इतनी ताकत है मैं ले लूंगा, नहीं ले सकते। अलभ्यम लभते मर्त्य है, जो चीज नहीं मिलने वाली वो नहीं मिलेगी, इसलिए शोक क्यों करो भाई? भगवान ने मेरे ऐसा विधान बनाया है, हार बना दी, हार मैंने हार ले ली, स्वीकार कर ली। जो इसको मिलना चाहिए वही मिलता है। देखो ये खास बात है, प्रारब्ध से जो परिस्थिति आती है जो मिलना चाहिए वही इसको मिलता है। कुशली सर्व दुखेशु सवई सर्वधन होना रहे, मनुष्य सब प्रकार के दुखों में सकुशल रहे, यही सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा धनवान है। सर्व एव सर्व धनो नर है, उसके पास सारा धन है। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज पितामह आपके ये अमूल्य उपदेश कहीं आपके साथ ही चले जाएंगे, मुझे इसको और विस्तार से समझाओ। जिस आदमी के घर में प्राणी चला गया, जिस आदमी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिस आदमी को समाज ने तिरस्कृत कर दिया है, जिस आदमी के शरीर में मारक बीमारी लग गई है, इतने इतने संकट हैं, वो आदमी कल्याण की तरफ कैसे चल सकता है। बंधु नाशे, राज्य नाशे, क्या करे, ये सब उसका नष्ट हो जाए, भाई बंधु मर जाए, राज्य नष्ट हो जाए, लोग उसका कोई आदर ही न करें, चारों तरफ से सब दुख आ जाए, फिर महाराज वो कैसे परमात्मा की तरफ चल सकता है। इस शंका का समाधान तो आप जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो, स्त्री पुत्र है, धन है, इत्यादियों के साथ यदि कोई व्यसन आ जाए, दुख आ जाए, तो सबसे बड़ा उसके पास शस्त्र धैर्य है। धैर्य, धीरज रखना चाहिए। और जो आदमी धैर्य धारण करता है और शोक नहीं करता है, उसके आरोग्य बढ़ता है, शरीर में उसके बीमारी नहीं आती। और शोक करता है तो उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसमें हम आपको बड़ा सुंदर एक उदाहरण बताते हैं कि एक बार की बात है, महाराज बलि और इंद्र का जो पहले संवाद हुआ ना, उससे विचित्र संवाद है, बड़ा विचित्र संवाद हुआ। दानवों का, दैत्यों का संहार हो गया। भगवान विष्णु ने अपने तीन चरण से बलि का राज्य छीन लिया और स्वर्ग आदि पर देवराज इंद्र का आधिपत्य हो गया। एक बार बलि महाराज कहीं घूमते घूमते समुद्र तट पर मिले और वहीं पर इंद्र उनको ढूंढते ढूंढते समुद्र के किनारे आ गया। देखो, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है, वो क्या हो रहा है कि जिस दिन महाराज बलि को भगवान वामन ने कहा कि हम तुझे वरुण पास से बांधेंगे, बांध भी दिया और नरक में भेजेंगे, उसने कहा कोई बात नहीं, तो भगवान ने उसको सुतल में भेज दिया, फिर इंद्र कहां मिला। कथा तो यही आती है, पर ये मिलना क्या, सुतल में भेजने का अर्थ यही है कि सुतल में रहने रहने की जगह, लेकिन और जगह घूमने से मनाही थोड़े ही थी। अपने लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, हम लोग इस धाम में रहते हैं, इसका अर्थ ये थोड़े इस धाम में रहते हैं तो हम कहीं बाहर जा ही नहीं सकें। आप लोग भी कहीं बीकानेर वगैरह जा नहीं सको, आपका घर है, आपकी जगह है, लेकिन आप सब जगह जा सकते हो जहां भी आपका मन हो। ऐसे ये बलि महाराज घूमते घूमते समुद्र के तट पर पहुंचे तो इंद्र पहुंच गया, हाथी पर बैठा हुआ। देवता लोग कोई छत्ता लिए हुए है, तो कोई चमर लिए हुए है, तो कोई क्या है, कोई क्या है। और बलि ने देखा, बलि देख करके मुस्कुराया है। इंद्र को आश्चर्य हुआ, दृष्ट्वा तम अविकारस्थम, देखा इसका तेज तो और ज्यादा बढ़ गया, शरीर में हृष्ट पुष्ट हो गया और निर्भय खड़ा है, प्रसन्न है। देवराज इंद्र ने कहा, हे दैत्य, ने व्यथसे, तेरे कोई व्यथा नहीं हो रही है, तेरे हाथ से त्रिलोकी का राज्य चला गया, तू कहां था, अब कहां समुद्र के किनारे फिर रहा है, तूने कितना शौर्य दिखाया, कितना पराक्रम दिखाया, कितना कितना तूने वैभव प्राप्त किया, किसी को मिलता नहीं है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई शोक का चिन्ह नहीं है, क्या कारण है। एक तो आदमी अपना शोक छिपाता है और वो आदमी दंभपूर्वक अपनी प्रसन्नता दिखाता है, उसका चेहरा अपने आप बोल देता है, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, इतने बड़े तुम श्रेष्ठ थे और आज तुम वरुण पास से बांधे हुए हो, तुम्हारे स्त्री का, तुम्हारे धन का, तुम्हारे राज्य का कुछ पता नहीं है, फिर भी तुम इतने आनंदित होकर समुद्र के किनारे विचरण करते हो, क्या बात है, और बड़े प्रसन्न हो। विरोचन पुत्र बलि ने कहा, निगृहीते मयि वृषम शक्र किम कथितेन ते, निगृहीते मयि वृषम शक्र किम कित कथितेन ते, वज्रमुद्यम्य तिष्ठन्तम् पश्यामि त्वाम् पुरंदर। देखो इंद्र, तुम्हारे द्वारा बंदी बना लिया गया हूं और तुम मेरे सामने खूब ऊंची ऊंची बातें सुना रहे हो और बार बार ये वज्र उठा रहे हो, सब देखता हूं। देखो पहले जैसी मेरे में अब शक्ति नहीं रही, इसीलिए तुम इतने कठोर वचन कहते हो। पर एक बात याद रखना, जब युद्ध छिड़ता है तो कौन विजयी होता है कौन विजयी नहीं होता इसका पता नहीं चलता है। तो अब की बार युद्ध में मैं हार गया, हार गया क्या हो गया इसमें? और आज तुम बढ़ चढ़ करके बातें करते हो, पहले हमने भी तुमको हराया था, हम भी ऐसी बढ़ चढ़ कर बातें करते थे। तो ये सुख और दुख सबके अंदर क्रम से आते रहते हैं जाते रहते हैं, पर्यायेण सकृत्वम प्राप्त है। तुम जो अभी इंद्र बने हो वो अपने पराक्रम से नहीं बने हो, तुम बने हो अपने प्रारब्ध से बने हो। ये समय एक ऐसी चीज है कि जो कब किसके साथ क्या संयोग करा दे पता नहीं चलता है। मनुष्य के पास बुद्धि बल के सिवा और कोई बल नहीं है कि सैकड़ों प्रकार के कष्ट सहन कर ले, बुद्धि बल से सहन कर सकता है। ये तो समय की बात है भाई, अभी मेरा समय पराजय का है तो है, इसमें करने वाले का कोई लेन देन नहीं है। इस समय तुम समय को प्राप्त करके कालजयी बन गए और कभी हम भी आगे बढ़ सकेंगे। जब प्रारब्ध का वेग आता है, समय का वेग आता है, उस समय उसको कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र के ऊपर जोर से जिस तरफ से हवा चलती है उस हवा से नौका अपने आप ही घूम जाती है और वो अपनी दिशा को जिधर जाना चाहती उससे हट जाती है, ऐसे ही प्रारब्ध के कारण से मनुष्य को न मिलने वाली चीज मिल जाती है नहीं और मिलने वाली नहीं मिलती है। अरे इंद्र बहुनी इंद्र सहस्राणी, हजारों हजारों लाखों लाखों इंद्र हो गए और होते रहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और कई बार इंद्र वे कई बार बलि भी हुआ है, ऐसे ही लड़ेंगे झगड़ेंगे, समय को तो देखना चाहिए। इदम तो लब्ध्वा संस्थानम आत्मानम बहुमन्य से, अभी इंद्र बनकर के तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा घमंड आ गया है, अपने को बड़ा मानते हो। पर याद रखो न इदम अचलम स्थानम, ये स्थान तुम्हारा हरदम अचल तो रहेगा नहीं, अनंत रहेगा नहीं, इसलिए इस स्थान को मेरा मत मानो। जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर विश्वास बिल्कुल मत करो, ये मेरा है ये उसका है ये भावना मन के अंदर बिल्कुल मत रखो। ये लक्ष्मी बड़ी चंचल है, जैसे गाय कहीं पानी पीती है तो वहां से सीधे आगे निकल जाती है, पर वो मुड़ करके नहीं देखती, ऐसे ही लक्ष्मी है, कभी आती है आती है, फिर मुड़ करके नहीं देखती सीधी चली जाती है। लक्ष्मी का क्या गुमान करो, गो निपानम इव सृज्य पुनरअन्यम गमिष्यति। अरे इंद्र आज तक कितने राजा वे, पृथु वे अहिल वे मय भीम नरकासुर शंबरासुर अश्वगरी खूब नाम लिए, इतने इतने राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े दैत्य हुए दानव हुए देवता हुए, बड़े विचित्र थे दैत्य दानव सब, पृथ्वी के ऊपर इनका बड़ा बोलबाला था, आज कहाँ है। सर्वे कालो ही बलवत्तर है, इन सब के अंदर काल है ना ये सबसे बलवान होता है, आज इसको हम देख रहे हैं वो कल नहीं मिलेगा। कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने सैकड़ों सैकड़ों यज्ञ न किए हों। अब कौन कहां चले गए, कोई आकाश में विचरण करने की शक्ति रखते थे, कोई पाताल में जाने की शक्ति रखते थे, आज कहां है वो। बड़े बड़े जो है वेद व्रत धारण करने वाले, बहुत ज्ञान सुनने वाले बहुत थे, परंतु आज कोई दिखाई नहीं देता है। सभी नरेश जिनकी कांति फैलती थी, जिनके जिस दिशा में जाने पर सब लोग भयभीत हो जाया करते थे कि आज इधर से वो आ रहे हैं, ओहो आज उनका नामो निशान नहीं है। इसलिए सुनो इंद्र, हमारी बात सुनो, क्षमा करना। मनुष्य की थोड़ी देर भी बातचीत होती हो उसके अंदर सार बात होनी चाहिए। तुम संसार के काम भोग की इच्छा बिल्कुल नष्ट करो, लक्ष्मी का जो मद है इसका बिल्कुल भीतर से त्याग करो, और उसके बाद यदि तुम्हारा राज्य चला जाए तो तुमको शोक नहीं होगा। पहले से ही विचार कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लक्ष्मी की लक्ष्मी जी भी नहीं चाहिए, लक्ष्मी का भी मद मत आने दो, घमंड मत आने दो। फिर यदि कभी हम लोग तुमको जीत भी जाएंगे तो तुम शोकाकुल नहीं होंगे। इंद्र मैंने तो ऐसा ही सोचा था, तुम्हारे साथ युद्ध किया यही सोचा कि क्या पता मरेंगे जिएंगे, राज्य जाएगा रहेगा, मेरा काम युद्ध करने का है इसलिए मैंने युद्ध किया। क्षमस्व, क्षमा करना, मैंने आपको कुछ ज्यादा कह दिया। तुम ही बताओ इस संसार में कौन ऐसा वीर पुरुष हुआ है कि जो मेरे सामने कुपित होने पर युद्ध के अंदर ठहर जाए। कोई स्थातुम अलम लोके मम क्रुद्धस्य संयुगे, मेरे सामने टिक नहीं सकता था। अच्छा तुम ही बताओ इंद्र, तुम मेरे से कितने भयभीत रहते थे, आज भयभीत हो क्या? उल्टा आज तुम हाथी पर बैठे हुए वज्र का ही जोश दिखाते हो, ये तो पहले भी था तुम्हारे हाथ में, पर उस समय तुम्हारे पास काल का बल नहीं था, प्रारब्ध का बल नहीं था, उस समय मेरे पक्ष में था। आज उलट फोर करके ये मेरे हाथ से समय निकल गया, तुम्हारे पास आ गया। देखो इंद्र, मैं भी जानता हूं कि तुम कैसे हो और तुम भी जानते हो कि मैं कैसा हूं। पहले जब अपना संग्राम हुआ था तो उस समय सब देवता लोग तुम मेरे सामने से भग गए थे कि नहीं? समेता बबुधा भगना तरसा समरे मया, एक एक देवता को पकड़ पकड़ करके मैंने उनके ऊपर गदा का प्रहार किया, वो हाय त्राहि करते हुए इधर उधर भगने लगे। और पर्वता शास्त्रकृत क्षिप्ता सैवना सैवनऊ कसे, और मैंने बड़े बड़े पर्वत उठा उठा करके तुम्हारे पर डाल दिए थे, तुम पर्वतों के नीचे कहीं छिप गए, कोई बच गए कोई मर गए। आज मैं कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, मेरे पास वो समय नहीं है। इसलिए इंद्र अभी तुम जो कुछ बोलते हो वो समय के कारण से सब सह लेता हूं, पर याद रखना ऐसा हर किसी का समय का दुरुपयोग मत करना। जो व्यक्ति समय से मारा जाता है उसको तो सहायता देनी चाहिए। ये काल ने वैसे ही हमको बांध रखा है जैसे लोग पशु को डोरी से बांधते हैं। लाभ हानि सुख दुख काम क्रोध उत्पत्ति विनाश मुक्ति और बंधन, ये सब काल के द्वारा है। मुक्ति माने कैद खाने से मुक्ति, मुक्ति माने ये कल्याण वाली मुक्ति नहीं, और बंधन का अर्थ ये सांसारिक आसक्ति से बंधन होता है, ये बंधन नहीं है। बंधन मुक्त का अर्थ कैद में जाना और कैद से छूटना, ये भाग्य के अधीन है। भगवान का भजन करना, कल्याण करना, मुक्ति करना, ये भाग्य के अधीन नहीं है। मनुष्य जिन कर्मों को करने से सुखी होता है, यदि काल का सहयोग न मिले तो उन्हीं कर्मों से दुख भी हो जाता है। इंद्र ने कहा क्या बताऊं, तुम इतनी अच्छी बात बोले हो बलि, तुम्हारी बातें सुनकर मैं मन में सोचता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ ये क्यों युद्ध किया। तुम वास्तव में इतने बड़े संकट में आकर के भी व्यथित नहीं हुए, तुम्हारा धैर्य है, मैं इस धैर्य को खूब स्मरण में लाता हूं, आदर्श मेरे लिए। अब मेरे दिमाग में भी ये बात बैठ गई है कि काल की अग्नि में सब कुछ जल रहा है, यहां कोई भी बचने वाला नहीं है, छूटने का भी कोई उपाय नहीं है, काल के ऊपर किसी का बस नहीं चलता है, सब लोग प्रमादी हैं लेकिन काल प्रमाद नहीं करता है। अप्रमत्तः प्रमत्तेषु कालो जागर्ति देहिषु, सब प्राणी सोते हैं नींद लेते हैं, एक काल ही ऐसा है जो कभी नींद नहीं लेता है, यह प्रयत्न करने पर भी पीछे नहीं हटता, लाख उपाय कर लो गया हुआ समय वापस नहीं आता, ये धर्म का स्वरूप है। और जैसे ब्याज लेने वाला आदमी वो रात दिन महीना सब कुछ गिनता है, ऐसे ये काल है, ये हिसाब लगा लगा करके सबको उत्पीड़ित करता है। एक आदमी ने रुपया दिया और एक आदमी ने रुपया लिया ब्याज पर, अब जिसने ब्याज का रुपया लिया है उसको एक एक दिन का, घड़ी का, मिनट का, सबका उसको ब्याज देना पड़ता है। ऐसे ही काल है ये, संपीड़ित यह काल है, ये काल भी सबको पीड़ित करता है, जो ब्याज देने वाला पीड़ित करता है। ऐसे तुम यदि मुझे कहो तो नदी का वेग रोक सकता हूं, तुम मुझे कहो तो पर्वत को उलट पुलट कर सकता हूं, तुम यदि कहो तो मैं समुद्र को सुखा सकता हूं, लेकिन काल को नहीं जीत सकता। सच बात है महाराज बलि जी, कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है, इदानीम तदेव आसु, अरे ये व्यक्ति तो अभी था, क्या हुआ ये साहब, वो तो चला गया है, मया दृष्ट है कथम मृत है, अरे अभी मैंने देखा और कैसे मर गया, इतना बड़ा आश्चर्य मूर्खों को होता है, मर गया। प्रलाप श्रूयते नृणाम, मनुष्यों में तो ये बात बहुत देखी जाती है, ये धन ये भोग ये सब नष्ट होने वाले हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर जाने क्या क्या एक अज्ञान छाया हुआ है महाराज बलि जी, वो इस मृत्यु को जानता हुआ भी अनजान किए हुए चला है, सत्य को तिरस्कृत करता हुआ चलता है। अहम आसम पुरा चेति मनसापि न बुध्यते, मेरी पहले क्या परिस्थिति थी, आज में क्या हो गया, इन सब के बीच में मृत्यु ही तो नाच रही है, ये बात भूल जाता है। हे बलि महाराज, आप बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, तत्वज्ञ हो, आपने अपने हाथ के अंदर आंवले के समान प्रत्यक्षतः मृत्यु को देखा है, वही संसार में सबसे श्रेष्ठ है। मृत्यु को जो भूलता है वो अपने साथ महान अन्याय करता है। वाह वाह, निष्प्रीतिम नष्ट संतापम आत्मानम त्वम उपासते, तुम हर्ष से रहित हो, संताप से शून्य हो, क्यों? क्योंकि तुमने काल में डूबे हुए संसार से हटकर काल से भी अतीत जो आत्मा है उस आत्मा में आकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया। तुम्हें देखकर मेरे मन में कई विचार आते हैं, आया तो था कि इस वज्र से तुम्हारा सिर काट दूं, लेकिन मेरा वज्र ढीला हो गया। वास्तव में तुम ज्ञान से बड़े सुरक्षित हो। ठीक है बलि महाराज, अब मैं आपको एक बात कहता हूं, प्रजानाम अपचारेण, जब प्रजा के अंदर न्याय की जगह अन्याय होगा, प्रजा दुराचार में लग जाएगी, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यदा श्वश्रुम स्नुषा वृद्धाम, जब सासू को उसकी पुत्रवधु नहीं उसकी पौत्रवधु वो कहेगी कि दादी सासू जी क्या कर रही हो बैठी बैठी, ये काम आपसे नहीं होता है, कपड़े नहीं धुपते आपसे, रोटी नहीं बनाई जाती, परिचारेण योक्षते, घर के काम धंधे में जबरदस्ती वो लगाएगी उसको, और पुत्र अपने पिता को प्रेषयिष्यति कर्मसु, वो काम में लगाए, पिताजी आप घर में बैठे क्या करते हो, ये काम करो ये करो ये करो वो करो, ऐसा हुक्म चलाया जाएगा। ब्राह्मण ब्राह्मण ही कारी शंति ब्रिशला पाद धावनम, और शूद्र लोग कहेंगे ए ब्राह्मणों इधर आओ, बहुत वर्ष हो गया आपको अन्याय करते हुए, हमको छोटा मानकर घृणा करते, धो मेरे पैर, पड़ो मेरे पैरों में, यदि आपको अपनी उन्नति चाहना है तो मेरे पैर धो, पाद धावनम। और शूद्रा शूद्र लोग हैं वो ब्राह्मणियों को घर में रखेंगी, निर्भय होकर रखेंगे, शूद्र कहेंगे हम ब्राह्मणी के साथ शादी करेंगे, बोलो कौन है बोलने वाला। संकरम कांस्य भांडैश्च, और नीच जाति के लोग हैं वो कांसे के पात्र इकट्ठे करेंगे, हम काशी में जिमेंगे साहब, और दूसरे आदमी है वो बिचारे लोहे के पात्रों में भोजन करते रहेंगे। बलिम चैव कुपात्र कहे, दान देंगे कुपात्रों को, दान दो रात में जाकर वे मदिरा पियेंगे, ऐसों को दान देकर लोग खुश होते हैं, ऐसा समय आएगा। और चातुर्वर्ण्यम यदा कृष्णम, और जब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्णों की व्यवस्था मर्यादा रहित हो जाएगी, एक एक करके सब चीजें होने लगेंगी, तब तुम्हारा ये पास छूट जाएगा। हमारी ओर से तो कोई भय नहीं है बलि महाराज, क्योंकि आपने बड़े ज्ञान की बातें कही हैं, परंतु आने वाले समय से आपको डरना चाहिए। ऐसा कहकर के बलि को बड़ी श्रद्धा से नमस्कार करके और अपने हृदय से कि ये बलि मेरा शत्रु है, ये शत्रु भाव निकाल करके इंद्र महाराज अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके देवताओं के साथ अपने स्वर्ग में चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे पितामह, कितनी विलक्षण बात एक दैत्य होकर बलि ने कही है, क्योंकि उसने भगवान के चरणों को धोया है और उसके दादा ने भगवान की भक्ति की है, धोया ही नहीं है उसने भगवान के चरणों को धोकर के पिया है, कैसी बलि की बुद्धि है कि वो ऐसे समय में भी कैसे निशोक होकर रहा है। अब महाराज मुझे ये बताओ कि जिस पुरुष का उत्थान होने वाला है या पतन होने वाला है, इसकी क्या पहचान होती है कि हे अब ये खड्डे में गिरेगा, और या हे अब इसकी उन्नति होगी, इसकी क्या पहचान है। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो, उत्थान पतन की बातें अपने मन में ही पैदा होने लग जाती हैं। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी का और इंद्र का संवाद हुआ। नारद जी महाराज थे, वो ऊंचे नीचे सब लोकों में घूमते घामते ब्रह्मलोक निवासियों के यहां भी गए, वहां से जाते जाते विचरण करते करते तपस्या के प्रभाव से वे आकर के गंगा जी के किनारे आए, और गंगा जी के जल में आकर प्रातःकाल स्नान करने लगे। योग की बात थी कि उसी समय में हाथ में वज्र लिया हुआ इंद्र वहीं नारद जी के वहीं आ गया। दोनों मिले आपस में, नारद जी को प्रणाम किया, खूब आपस में बातें हुई, कैसे क्या हो रहा है। नारद जी ने कहा कि देखो इंद्र, हमने सुना है आजकल तुमने बलि का सत्संग किया है, बहुत अच्छा किया। जो भगवान से मिला हुआ होता है उस आदमी का सत्संग किया हुआ बड़ा लाभ देता है। कहने लगे महाराज नारद जी, थोड़ी देर मैंने सत्संग किया, मेरा हृदय में बैर था बलि से, वो जिससे मेरा बैर था उसी की सत्संग से मेरा बैर खत्म हो गया। कितना बड़ा आश्चर्य है। इसलिए इस संसार में काम, क्रोध, मोह, अहंकार, बैर, इसको सत्संग के अलावा और किसी उपाय से नष्ट नहीं कर सकते। कहां मैं बताओ त्रिलोकी का राजा बना हुआ, घमंड में पड़ा हुआ भजन करूंगा। सत्संग किया और कल्याण, मेरा हृदय से द्वेष भाव निकल गया। आज मुझे बलि मिलते हैं तो मैं उनको बातों बात लेकर मिलता हूं, भाई से ज्यादा आदर करता हूं। ऐसी बातें हो रही थी। अरे आकाश में सोने का विमान जगो कैसे जगमगा रहा है और अपने पास ही आ रहा है, इंद्र ये क्या चीज है। नारद जी महाराज जी तो आप ही जानो, मैं क्या बताऊं। यूं विमान आ रहा है, विमान आकर के और यूं रुका और उस विमान में दिव्य जो है मूर्ति लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी विराजमान, उनके आगे पीछे अगल बगल में उनकी सेविकाएं रहने वाली, साथ साथ में उनके साथ में कई अप्सराएं भी थी। नारद जी के पास और इंद्र के पास आई। नारद जी तो पहचान गए उसको, बोले नहीं। इंद्र ने कहा कात्वम, देवी कौन हो तुम, कात्वम केन च कार्य ने संप्राप्ता, कौन कार्य से आए हो, कहां जाना है। लक्ष्मी जी ने कहा कि त्रिलोकी के अंदर जो मेरे अंदर भाव रखता है उसके पास जाया करती हूं। तुमने मेरा नाम पूछा, मेरा नाम पद्मा है क्योंकि मैं पद्म से पैदा हुई हूं, कमल से पैदा हुई हूं। मुझे कमला भी बोलते हैं, पद्मा भी बोलते हैं और मुझे श्री भी बोलते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरे साथ में ये जो सखियां हैं, वो कोई श्रद्धा है, कोई मेधा है, कोई सन्नति है, कोई विजिति है, कोई स्थिति है, कोई नियति है, कोई स्वाहा है, स्वधा, ये सब मेरे साथ रहती हैं। और जिस राजा के यहां विजय प्राप्त करनी होती है उसके झंडे के अंदर मैं रहता हूं, उसके झंडे में मैं रहती हूं और मेरी सखियों में भी ये जाकर के उसमें निवास करती है। और जो ब्राह्मण भक्त होता है, सत्यवादी होता है, मैं उसके पास में बैठा करती हूं। और अब मैंने असुरों को छोड़ दिया है, इतने दिन तक असुरों के पास थी, अब असुरों को तो मैंने छोड़ दिया है और अब मैं तुम्हारे पास आई हूं। इंद्र ने कहा लक्ष्मी जी मुझे बड़ा डर लगता है, पहले तो आप आती हो और फिर चली जाती हो, आप आती हुई तो बड़ी अच्छी लगती हो पर जाती हुई आप हमारा मुंह लटका देती हो, बड़ी उदासीनता होती है। आप ये बता दो कि किसके पास मैं रहती हूं और किसके पास मैं नहीं रह सकती, ताकि हम लोग सावधान हो जाए। लक्ष्मी जी ने कहा ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है इंद्र तुमने, जो अपने धर्म का पालन करता है, जो धैर्य धारण करता है, दुखों में विचलित नहीं होता है, मैं उसके पास स्थिर भाव से रहती हूं। कहने के लिए मुझे चंचला बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं कि जब उसमें अवगुण आते हैं तो मैं छोड़ देती हूं, गुण होते हैं तो मैं वहां रहती हूं। जो लोग अपना घर बार साफ नहीं रखते हैं, धूल पड़ी है, गंदगी पड़ी है, कहीं कहीं साफ नहीं रखते, साफ उसको झटका झटकू के अपना साफ नहीं रखते, उसके घर में मैं नहीं रहती हूं। देखो साफ लिखा है। जो बात बात के ऊपर चिढ़ते रहते हैं, घर गृहस्थ तो प्रेम बढ़ाने के लिए है, मोह बढ़ाने के लिए नहीं, प्रेम बढ़ाने के लिए है, और वहां बात बात में पति और पत्नी में कलह होता रहता है, भाई भाई में कलह होता है, पुत्र पिता में कलह होता है, और जहां दान की कोई बात चलती न हो, दान के समय में सब मुंह सिकोड़ते हैं, मैं वहां नहीं रहती हूं। और बड़े आदमी के आने पर छोटे आदमी अपने आसन से खड़े नहीं होते हैं, मैं वहां नहीं रहती हूं। जो अपने नौकर चाकर की उपेक्षा करता है, मैं वहां नहीं रहती हूं। जो आदमी दान देते हैं और संग्रहित आ रहे हैं, और दान लेकर के और लेने वाला केवल उसका संग्रही करता रहता है, मैं वहां से रवाना हो जाती हूं। जो आदमी प्रातः काल तक पड़ा रहता है, सूर्य की किरणें निकल रही हैं और सोया रहता है, मैं वहां से रवाना हो जाती हूं। जो आदमी रात्रि में दही खाता है और शक्तुंश और सत्तू खाता है, मैं वहां नहीं रहता हूं। रात में सत्तू मत खा जाओ, आ तीज को कहीं चीज तीज आवे छठ आवे कहीं बैठा को तीज आवे तो सत्तू बड़ा होते घर में, तो रात न मत खा जाओ, दिन में खा जाओ। रात्रु दधी च शक्तुंश से, और प्रातःकाल जो घृत का दर्शन करता है, उनके यहां मैं रहती हूं। अर्धरात्र्याम जो आधी रात बीत जाती है फिर भी सोते नहीं है, एक दो बजे तक लोग जगते रहते हैं, मैं वहां नहीं रहती हूं। और जो आदमी दिन में सोता है, मैं वहां उनके पास नहीं रहती हूं। लोग कहते हैं आराम करो, दिन में थोड़ा सो जाओ, दिन में सोना नहीं चाहिए। जो धन खर्च करने में बात बात में कंजूसी करते हैं, उचित जगह पर भी जो खर्च नहीं कर सकते हैं, मैं वहां से रवाना हो जाती हूं, क्योंकि वहां मेरा बड़ा दुरुपयोग होता है। जो आदमी हर जगह संदेह करता है, बात बात में संदेह करता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं वहां नहीं रहती हूं। जो आदमी हिंसा नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता, पितरों का पूजन करता है, देवताओं का पूजन करता है, अतिथि का पूजन करता है, वहां मैं रहती हूं। और जो अकेला भोजन नहीं करता, सबको भोजन कराने के साथ भोजन करता है, सब भोजन करो, सबके साथ भोजन करता है, अकेला नहीं खाता, मैं उसके पास रहती हूं। नेवाकाशे न पशुसु वियोनौ न च पर्वसु इंद्रियस्य विसर्गन्ते रोचयन्ते कदाचन। जो आदमी नित्य दान देता है, सरलता रखता है, हर काम में उत्साह रखता है, मैं करूं ऐसा करता है, और वाग अनिष्ठुरा कड़वी वाणी नहीं बोलता है, और पवित्रता रखता है, और मित्रेषु चाना भी द्रोह है, अपने मित्रों के साथ आत्मीय लोगों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करता है, वो उसमें सब गुण मौजूद रहते हैं। निंद्रा तंद्रा अप्रसन्नता दोष दृष्टि अविवेक और विषाद स्प्रिया, मेरे को ये मिल जाए, ये मेरे को मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा जहां भावना रहती वहां बिल्कुल नहीं रहती। तो अब ये सब बातें देवतियों में आ गई, इसलिए मैंने देवतियों को छोड़ दिया। जहां बड़े लोग बैठे हुए रहते हों, वहां छोटों को बड़ों के सामने कुछ बोलना नहीं चाहिए। भाई बड़े लोग बैठे हैं, हम क्या बोले। सभा सदांच वृद्धा नाम सताम कथयतां कथा। बड़े बूढ़े लोग बैठे शिष्टाचार की बात करें और प्रेम की बात करते हो, छोटे लोगों को सुनना चाहिए। फिर बोलते हैं युवानश्च समासीना, जवान आदमी है उम्र में छोटा है, इधर से बूढ़े आदमी आते हो, नाभ्युत्थाना विवादाभ्याम, वो उठ के उनको प्रणाम नहीं करते हैं, तो मैं उनके पास बिल्कुल नहीं रहती हूं। जहां बाप के रहते हुए बेटा संपत्ति का मालिक बनना चाहता है, क्या मांगते हो पिताजी, आपकी तो उम्र आ गई, क्या करोगे, अब हम मालिक है, ऐसा जो बर्ताव करता है, मैं वहां बिल्कुल नहीं रहती। रात को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके उच्चैस उच्चैसाभ्यवदन रात्रौ नीचैस्तात् तत्राग्निरज्वलत्। और अग्निहोत्र तो हो गया बंद और रात्रि के अंदर दूसरे प्रकाशों को जला जला करके हाय हल्ला मचाते रहते हैं, मैं वहां पर नहीं रहता हूं। जहां स्त्री पति को कड़वा जवाब देती है, ध्यान रख जो भाई, जहां स्त्रियां पति को कड़वा जवाब देती है, फटकारती है, वहां पर मेरा निवास नहीं होता। पति का आदर पूर्वक जो है वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जहां बच्चों के लालन पालन का विचार नहीं होता है, वहां पर मैं नहीं रहती हूं। कोई आदमी किसी को दान दे देता है और दान देने के बाद फिर उससे वापस लेने की इच्छा करता है, अथवा देने के बाद वो पश्चाताप करता है कि अरे फालतू मोडन जी माया, कहीं फायदा हो दे तो भाई कहीं बोले भिक्षावली क्यों है भाई, भिक्षाम बलिम अदत्वाच है, स्वयं अन्ना नि भुंजते अनिष्टवा असमिबज्ञात है पितृदेवातिथिन गुरु। और घर के अंदर दाना बिखरोड़ा रह गए अनाज रहा जगह जगह कि वो ये अच्छा नहीं, मैं नहीं रहती वहां, क्योंकि वहां कौवे और मूषक चूहे दौड़ते रहते हैं। कैसे रहूं, अनाज के लिए दौड़ते हैं आप, अनाज को बिखर गया तो इकट्ठा करो। और दूध है अपावृतम, खुला दूध पड़ा है, मैं वहां नहीं रहती, दूध को ढक करके रखो। और घी है, घी उस घी को झूठे हाथ से स्पर्श कर लिया, ये ठीक नहीं, अपवित्रता है। घर के अंदर रहने वाली स्त्रियां घर के सामान है, क्या है ये, कई प्रकार का भी दांती है, कुदाली है और है, ये सब बिखरी रहती, फावड़ बठिन पड़े है, दंताली बठिन पड़ी है, गैंती बठिन पड़ी है, बाद में ये नहीं, सब भेड़ी कर और एक जगह रखे। जना लक्ष्मी जी कहे कि जना मारो आदर है, नींद में चली जाऊं मटू। घर के अंदर टूटी फूटी दीवार है और उसकी मरम्मत नहीं कराते हैं तो हम चले जाते हैं। प्राकारागार विध्वंसान नस्मते प्रतिकूर्वते, दीवार है साहब टूट गई, पड़ी है तो पड़ी है कि नहीं, ठीक कराओ भाई। और अपने घर में गाय आदि पशु बांध दिया, और भी पशु बांध दिया, और उसको चारा है, उसको खाने लायक चीज है, पानी है, ये नहीं देते हैं तो वह मेरे हृदय में बड़ा क्लेश होता है, मैं छोड़ के चली जाती हूं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे अपने हाथ में पात्र लिए हुए कुछ खाने की प्रतीक्षा करते हैं, हमको कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन उनको खाने के लिए नहीं देते हैं, तब उनके बच्चों के मन में जो एक दुख होता है उससे मैं उस घर को छोड़ करके चली जाती हूं। और सूर्योदय होने तक लोग पड़े रहते हैं, प्रातःकाल को भी रात समझते हैं, अवर्तन कलहाश्चात्र है, रात दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, मैं वहां पर नहीं रहती हूं। स्त्री है पुरुष वेशेण है, स्त्रियां जब अपना पुरुष जैसा वेश बनाएंगी और पुरुष स्त्री जैसा कपड़ा पहनेंगे, ऐसे ऐसा उल्टा पुल्टा होता है, मुझे तो वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी हमारी एक कथा थी फिरोजपुर में, वहां पर अब हमको तो पता नहीं, धोती पहनी हुई एक भाई आई, आकर के माया बाया में बैठ गई। अब मैंने ध्यान को नहीं, भरी भरी सभा में, क्यों भाई अठिन क्या बैठे, दिखे कौन था ना अठिन बैठ, अठे माया बाया की जगह है, जड़ा मन किया गया माई भाई है वो भाई रे, माफ कर जो भाई ध्यान को नहीं, कड़ा कपड़ा पहरे हो ताने धोती पहनो कौन कियो, जाना धोती पहन रो कह मैं धोती पहरे नहीं, और स्त्रियां है मैं पैंट पहरे हूं, तो पता ही कौन चले कि स्त्री है पुरुष है। ये आज यहां पढ़ा तो पता चला कि ये कितनी बुरी बात है, स्त्रियां पुरुषों जैसा, पुरुष स्त्री, पता तो चलना चाहिए ना कौन स्त्री है कौन पुरुष है। ये लक्ष्मी जी कहते हैं मैं ऐसा नहीं रहता, मैं वहां नहीं रह सकती। धन को लेकर के आपस में परिवार में जहां कलह होता है वहां पर मैं किसी प्रकार नहीं रह सकती। व्यापार में जो केवल अपने स्वार्थ को लेकर के चलते हैं वहां पर मैं नहीं रह सकती। ब्राह्मण लोग ब्रह्मचर्य का व्रत किए बिना यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं और वेदादि अध्ययन करते हैं वहां पर मैं नहीं रहती। श्राद्ध का अन्न मूर्ख लोग खाते हैं, मूर्ख लोग श्राद्ध का अन्न खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा कि जब इस प्रकार से ये बातें हुई तब लक्ष्मी जी का दर्शन किया इंद्र देवता ने, नारद जी ने प्रणाम किया और फिर लक्ष्मी जी ने कहा अब मैं स्वर्ग में आ रही हूं इसी विमान से, हे इंद्र तुमको वहां पहुंचना है तो वहां पहुंच जाओ। फिर वहां पर वे पहुंच गए और स्वर्ग में जाकर लक्ष्मी जी प्रतिष्ठित हो गई। इसलिए जो काम करना चाहिए वो काम करने से लक्ष्मी रहती है, जो काम नहीं करने से नहीं करेंगे तो वहां पर जाकर के लक्ष्मी जी का निवास होता है, वहां लक्ष्मी जी रहती है। अब आगे युधिष्ठिर दूसरा प्रश्न करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण